आइए
हम पॉल का स्वागत करें जैसे वो वचन लेकर आते हैं.
Good morning, everyone.
सभी को सुप्रभात.
My wife and I are very happy to be here with you.
मैं और मेरी पत्नी आपके साथ यहाँ रहने के लिए बहुत ही आनंदित है.
Well, I'd like to open up with Genesis chapter 11 and verse 1.
और उत्पत्ति के 11वें अध्याय से पहला वचन से मैं पढ़ना चाहूँगा.
This was shortly after the flood of Noah.
और नूह ने जो जल प्रलय को देखा था उसके थोड़ी ही देर के बाद.
It is said that about 150 million people died in the flood of Noah.
1,500 लाख लोग उस बाढ़ की वजह से उनका अंत हुआ.
There were only 8 survivors.
और सिर्फ 8 ही लोग बच गए.
And so when they came off the ark,
तो वो जो जहाज से बाहर आने के बाद,
they began to multiply again.
फिर वो और बढ़ने लगे, गुणित होने लगे.
And very soon the whole earth was going astray and away from God all over again.
और फिर से लोग बढ़ने लगे उनके संख्या में और परमेश्वर से वो दूर होने लगे.
Verse 1.
पहला वचन.
And the whole earth was of one language and one speech.
सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी.
I'm sure they were all English.
और मुझे लगता है वो सब अंग्रेजी भाषिक थे.
Well, but they were using their unity for evil.
हाँ, परंतु वो अपनी जो एकता थी वो बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करते थे.
And we find that they were building a city and a tower.
और हम देखते हैं कि वो एक शहर और एक बड़ी ऊंची इमारत बना रहे थे.
It is said that this tower had 7 layers.
और ऐसा कहा जाता है कि वो जो ऊंची इमारत थी उसके 7 ऐसे स्तर थे.
And each layer was for the worship of one of the planets.
और हर एक जो वो मंजिल थी वहाँ पर वो एक प्लैनेट के आराधना के लिए थी.
And at the top was worship for the moon.
और सबसे ऊंचाई पर चांद को आराधना करने के लिए थी.
So here we see the beginning of astrology, of witchcraft, of false religions.
और यहाँ पर हम देखते हैं उन बातों की उत्पत्ति जैसे जादू टोना और अन्य देवताओं की उपासना.
And Noah was still alive.
और नूह अभी भी जीवित था.
Noah lived 350 years after the flood.
और नूह जो है 350 साल उस बाढ़ के बाद, उस जल प्रलय के बाद 350 साल जिया.
And he saw his grandchildren, his great grandchildren, about 10 generations.
और उसने अपने बच्चे, उनके बच्चे, उनके और बच्चे आने वाले 10 पीढ़ियों तक वो उसने देखा.
So what am I trying to say here?
तो यहाँ मैं क्या कहने जा रहा हूँ?
The problem is not that man does not know the truth, but does not love the truth.
और मनुष्य उस समय ऐसा नहीं था कि वह सच्चाई को नहीं जानता था, बल्कि वह सच्चाई से प्यार नहीं करता था.
They all knew the truth.
और वो सब जानते थे सच क्या है.
Noah was saying to all of them, "Don't you know what happened to the human race?"
और नूह सबको बता रहा था, पता नहीं सारे मानव जाति को क्या हुआ?
But man does not love the truth.
लेकिन मनुष्य सच्चाई से प्रेम नहीं करता.
And so we need a new heart.
तो हमें नया हृदय होने की आवश्यकता है.
Remember what Isaiah 53 said?
पता है यशायाह 53 में क्या कहा गया?
We all like sheep have gone astray.
हम उन भेड़ों की नाई यहाँ वहाँ तितर बितर हो गए हैं.
We have turned everyone to his own way.
और हम अपने अपने तरह से जीने के लिए आगे बढ़े हैं.
How quickly the human heart turns away from God and wanders and goes astray.
और कितने जल्दी ही से मनुष्य का जो हृदय है वो भटक जाता है, परमेश्वर से दूर होकर भटकता रहता है.
Let's go back to the very beginning.
और हम एकदम शुरुआत में चले जाते हैं.
Let's go back to Adam and Eve.
और आदम और हवा के पास उस समय में.
The first person to be born was Cain.
सबसे पहला जो उत्पन्न हुआ आदम और हवा के द्वारा वो केन उसका नाम.
And he saw God.
और उसने परमेश्वर को देखा.
He killed his own brother.
और उसने अपने भाई को मार डाला.
The Lord said to him, Cain, where is your brother?
और परमेश्वर ने केन को पूछा, तेरा भाई कहाँ है?
I don't know.
मुझे नहीं मालूम.
Am I responsible for my brother?
क्या मैं उसे संभालने वाला हूँ?
But here is a man that knew God.
लेकिन यहाँ एक मनुष्य है जो परमेश्वर को जानता था.
He knew the truth,
वो सच्चाई को भी जानता था.
But wanted to follow his own heart,
लेकिन अपने हृदय के पीछे चलने वाला
था. And go his own way,
और अपने रास्ते से चलने वाला था.
And he produced a terrible offspring,
और उसने उसकी वजह से बहुत ही ऐसी पीढ़ी जन्मी जो सही नहीं थी.
So we are born with a nature that goes astray very easily.
और हम जो जन्म लिए हैं वो ऐसे स्वभाव से जन्म लिए हैं कि बस हम भटकते हैं.
I'm so glad that the spirit of the creator can live in us.
और मैं इतना आनंदित हूँ कि परमेश्वर का आत्मा हमें विराजमान हो सकता है.
The one who created heaven and earth,
और वो जिसने स्वर्ग और धरती को बनाया,
can live in us.
वो हमारे अंदर रह सकता है.
Christ in you is the hope of glory.
और तुम्हारे अंदर जो मसीह है वो तुम्हारी महिमा की आशा है.
He conquered a fallen nature.
और उसने जो गिरी हुई व्यवस्था थी उसके ऊपर वो विजयी हुआ.
Let's turn to Ezekiel 36.
यहेजकेल के 36वें अध्याय में हम जाते हैं.
There was a promise of a new covenant.
और वहाँ पर नई वाचा की का एक प्रतिज्ञा दिया था.
In chapter 36, verse 26.
और यहेजकेल के 36वें अध्याय के 26वें वचन में हम देखते हैं.
A new heart also I will give you, and a new spirit I will put within you, and take away the stony heart out of your flesh and give you a heart of flesh.
मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा.
Verse 27.
और 27वां वचन.
I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes.
और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे.
Look at verse 25.
और 25वां वचन.
I will sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness.
मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे.
Oh, the water of the word of God can wash us.
परमेश्वर के वचन का पानी है हमें धो सकता है.
From all your idols I will cleanse you.
तुम्हारे सारे मूर्तियों से तुम्हारी सारी अशुद्धता मैं दूर करूंगा.
We will speak briefly on idolatry in the heart this morning.
और इस सुबह हमारे मन में जो मूर्ति पूजा है उसके बारे में हम बात करेंगे.
Now in the Old Testament,
और पुराने नियम में,
the laws of God were written on tables of stone.
और परमेश्वर की जो विधियां थी वो पत्थरों पर लिखी थी.
But the Lord promised to bring those laws into our heart and into our mind.
लेकिन परमेश्वर ने उन विधियों को उन व्यवस्था को हमारे हृदय में और हमारे मन में डाला.
We find that in Jeremiah also.
और उसको हम यिर्मयाह में भी देखते हैं.
So when Jesus came,
तो जब यीशु आया,
he brought a new covenant.
उसने नई वाचा लेकर आया.
And he said, in the old time, in the Old Testament, it was said, you shall not kill.
और उसने कहा कि पुराने नियम में लिखा है कि तुम्हें हत्या नहीं करना है.
But he's going to deal with the root of the problem.
लेकिन उसने वह मुश्किल का जड़ क्या है उस पर ध्यान लगाया.
He came to bring that law into the heart.
और उसने वो जो विधिया थी हमारे हृदय में बसाने के लिए वो आया.
But I say to you, do not even allow hatred in your heart.
और यीशु कहता है कि तुम दूसरे का तिरस्कार भी नहीं करना अपने हृदय में.
Sin begins in our heart and in our thoughts.
और पाप जो है हमारे हृदय में शुरू होता है और हमारे विचारों में शुरू होता है.
In the Old Testament it said you shall not commit adultery.
और पुराने नियम में वहां पर लिखा है कि तुम व्यभिचार नहीं करना.
But I say to you,
लेकिन मैं तुमको कहता हूं,
don't even think these thoughts in your heart.
इन सारे विचारों को भी तुम्हारे इन विचारों को तुम्हारे मन में भी नहीं लेना.
He came to deal with the root of the problem.
और यीशु आया हमारे जड़ का जड़ से उस मुश्किल को निकालने के लिए.
When a person turns on his internet,
जब कोई व्यक्ति इंटरनेट शुरू करता है
and looks at pornography,
और वो अश्लील चित्रों को देखता है,
he is filling his mind and his heart with an evil spirit.
और वो अपने मन और अपने हृदय को वो बुरी आत्मा से भर रहा है.
And that leads to adultery, fornication.
और उसकी वजह से वो व्यभिचार और ऐसे बुरे कर्मों में आ जाता है.
And so Christ came to deal with the root of the problem.
तो यीशु मसीह आया यह जो मूलभूत जड़ से जो मुश्किल है उसे निकालने के लिए.
Don't even desire it, don't even think about it.
और वो कहता है कि उसके बारे में इच्छा ना रखो और सोचो भी नहीं.
Sin begins in our thoughts, in our heart, with our eyes.
और पाप शुरू होता है हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे आँखों के द्वारा.
And we want to ask the Lord to write his law in our minds and in our hearts.
और हम प्रभु को कहते हैं तेरी व्यवस्था हमारे मन और हमारे हृदय में बसा दे.
We need to be sure we've all been baptized in water by immersion.
और हमें यह भी करना है कि हम पानी में बपतिस्मा लेना है.
That is symbolized in the Old Testament.
Oh, sorry, I didn't get that.
Baptism is symbolized in the Old Testament.
Symbolized, okay. और पुराने नियम में भी बपतिस्मा के बारे में हमें संकेत मिलता है, हमें निशानी मिलती है.
God's people were in bondage in Egypt.
और परमेश्वर के लोग दासत्व में थे मिस्र देश में.
They were saved by the blood of the lamb.
और वो मेमने के लहू के द्वारा उनका उद्धार हुआ था.
And Jesus Christ is that lamb.
और यीशु मसीह ही वो मेमना है.
But immediately they were to get out of Egypt.
लेकिन तुरंत ही उनको मिस्र देश से बाहर निकलना था.
The house of bondage.
और वो जो दासत्व में थे वहां से उन्हें बाहर निकलना था.
And they went down under the Red Sea and came up on the other side.
और फिर वो लाल समंदर से निकल कर फिर दूसरे बाजू में आए.
And that represents water baptism.
और वो एक प्रकार से पानी में बपतिस्मा को प्रदर्शित करता है.
And the enemies who were trying to draw them back were destroyed in the Red Sea.
और शत्रु सेना जो उनके पीछे लगी थी, उनको पीछे खींचना चाहती थी, वो उस समंदर में मारे गए.
And that's why it's important to be baptized by immersion.
और इसलिए हमें महत्वपूर्ण बात है कि हमें पानी में डूब कर बपतिस्मा लेना आवश्यक है.
It breaks the power of our past life.
और वो हमारे पिछले जीवन का जो प्रभाव है उसको तोड़ देता है.
Repent and be baptized and you shall receive the gift of the Holy Spirit.
पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो फिर तुम्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिलेगा.
So it is important to be water baptized.
तो महत्वपूर्ण है कि हमें पानी में बपतिस्मा लेना है.
I was in a church where a lady was 102 years old when she got baptized.
और मैं एक ऐसी कलीसिया में था जहाँ 102 साल की एक महिला थी जब उसका बपतिस्मा हुआ.
And she said, "Make sure every part of me is under the water."
और हमने देखा कि पूरा उसका शरीर का भाग है पानी के नीचे गया.
So don't think you're too old to be baptized.
तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं बहुत ही बुजुर्ग हूँ, बूढ़ा हूँ पानी में बपतिस्मा लेने के लिए.
Amen. Well, I want to talk about the problem of the human heart.
लेकिन मनुष्य के हृदय की मुश्किल को लेकर मैं बात करना चाहता हूँ.
Now the Bible talks about the heart about 850 times.
और बाइबल में 850 बार हृदय के बारे में बात की है.
A new heart I will give you.
मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा.
Our problem is a hard heart.
और मुश्किल हमारे साथ ये है कि हमारा हृदय कठिन है.
We are told in the book of Hebrews.
हमें इब्रानियों की किताब में हमें बताया गया है.
In chapter 3 and in chapter 4.
और तीसरे और चौथे अध्याय में.
Do not harden your heart.
अपने हृदय को कठोर नहीं करना.
This is where sin begins.
और यहीं पर पाप शुरू होता है.
We must not close our heart.
और हमारे हृदय को हमें बंद नहीं करना है.
We need grace from God.
और हमें परमेश्वर से अनुग्रह चाहिए.
When we are hurt,
जब हमें चोट लगती है,
we must come to the throne of grace to find help in time of need.
हम परमेश्वर के उस सिंहासन के पास आना है उस जरूरत को पूरा करने के लिए.
In Hebrews 4:16.
और इब्रानियों के चौथे अध्याय के 16वें वचन में.
We are told to come boldly to the throne of grace.
और सिंहासन के पास हिम्मत बांधकर हमें आने के लिए कहा गया है.
That we may obtain mercy and grace to help in time of need.
ताकि हम दया और अनुग्रह पाए हमारे आवश्यकता के अनुसार.
So when we are tempted.
तो जब हम लुभाए जाते हैं, बहकाए जाते हैं.
When we are weak.
जब हम कमजोर हैं.
When we are discouraged.
या हम निराशाजनक हैं.
We must come to the throne of grace.
तब हम परमेश्वर के उस सिंहासन के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास आना है.
Grace is a divine substance. Grace is a divine substance.
Sorry. Anil, just a little louder on this monitor. Yeah. Anugraha ek bahut hi aatmik vardaan hai.
It is a substance that God pours into us.
Aur wo aisa hai jo Parmeshwar hamare hrudayon mein undelta hai.
And we want to receive an abundance of grace.
Aur hame bahutayat se us anugraha ki chahat hai.
When Paul had a struggle in his life,
जब पौलुस अपने जीवन में लड़खड़ा रहा था,
the Lord said, "My grace is sufficient for you."
तब परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है.
But those who receive abundance of grace shall reign in life.
लेकिन वो जो बहुतायत से उस अनुग्रह को पाते हैं वो अपने जीवन में विजय पाएंगे.
So whenever we are hurt,
तो जब कभी हमें चोट लगती है,
we have a choice to make.
हमारे पास निर्णय है, हम क्या करना है, क्या कर सकते हैं.
We can humble ourselves.
हम अपने आप को नम्र कर सकते हैं.
Grace is only given to the humble.
और अनुग्रह उसी को दिया जाता है जो नम्र है.
We can humble ourselves and receive grace.
और हम अपने आप को नम्र करके अनुग्रह को पा सकते हैं.
Or we can harden our heart.
और या हम हमारे हृदय को कठिन कर सकते हैं.
And refuse grace.
और अनुग्रह को दूर ढकेल सकते हैं.
And we must make the right choice.
हमें सही चुनाव करना है.
Lord, give me a soft heart.
प्रभु मुझे मुलायम हृदय दे दे, कोमल हृदय दे.
Now in the Bible the heart is mentioned almost 850 times.
और बाइबल में 850 बार हृदय शब्द का जिक्र किया है.
It is not talking about the organ in our chest.
वो हमारे सीने में जो एक अवयव है उसके बारे में, एक अंग है उसके बारे में नहीं बताया है.
In the Bible, the heart means the center of our spirit.
और बाइबल में हृदय का मतलब है आत्मा का मध्य.
The very center of our being.
और हमारे जीवन का मध्य.
This is where our deepest affections are.
और वहीं पर हमारे सबसे अधिक प्रिय बातें हैं.
What we love or hate.
हम जिसको घृणा करते हैं या जिससे प्रेम करते हैं.
As a man thinks in his heart, so is he.
और जैसे मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा वो है.
This is where our deepest desires and motives are.
और यहाँ पर हमारी भली या बुरी इच्छाएं वहाँ पर है.
What we think through in our thoughts and decide is determined on what is in our heart.
और हम जो मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, वो हमारे हृदय में बहता है.
So we want to ask God to give us a clean heart.
तो हम परमेश्वर को कहना चाहते हैं कि हमें एक अच्छा या स्वच्छ हृदय दे.
So what did David pray?
तो दाऊद ने किस तरह की प्रार्थना की?
Create in me, O God, a clean heart.
प्रभु मेरे हृदय में एक शुद्ध मन तैयार कर.
In Jeremiah 17 verse 9.
यिर्मयाह के 17वें अध्याय के 9वें वचन में,
We don't know our heart.
हम हमारे हृदय को जानते ही नहीं है.
The heart is deceitful above all things and desperately wicked, but who can know it?
और मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है. उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है?
God must reveal to us what he sees in our heart. God must reveal what's in our heart. We don't. He must reveal it to us. Show us.
परमेश्वर ने हमें हमारे हृदय में क्या है वो दिखाना आवश्यक है.
Job was a very good man.
Saul बहुत ही अच्छा व्यक्ति था.
Job.
Sorry. I'm not able to hear. Please forgive me. अय्यूब जो था बहुत ही अच्छा व्यक्ति था.
And God put him through a trial.
और परमेश्वर ने उसे परीक्षा में डाल दिया.
And some hidden needs came to the surface.
और कुछ छिपी हुई बातें जो है ऊपर आ गई.
At the end of his trial.
और उसकी जो परीक्षा के अंत के समय में.
The Lord appeared to Job.
और परमेश्वर अय्यूब के सामने आया.
And he said, "Oh, I have said many things that I don't know anything about."
और प्रभु मैंने बहुत सारी बातें कही हैं जिसके बारे में मैं जानता भी नहीं हूँ.
I repent in dust and ashes.
और मैं पश्चाताप करता हूँ और मैं यहाँ राख में हूँ.
So we need to understand something.
तो हमें कुछ समझना है.
Righteousness is progressive.
धार्मिकता जो है वो बढ़ते जाने वाली बात है.
In chapter 1 of the book of Job,
अय्यूब के पहले अध्याय में,
Job was called a perfect and an upright man.
और अय्यूब का इस प्रकार से वर्णन है कि वह एकदम सही सही व्यक्ति है.
Then God went deeper into his heart.
फिर परमेश्वर उसके हृदय में गहराई से जाता है.
This is the purpose of trials.
और यह ही बात होती है जब हमारी परीक्षा होती है तब.
To reveal the needs in our heart.
तो हमारे हृदय में क्या बातें हैं वो हमें दर्शाने के लिए.
But at the end of his trial,
लेकिन उसकी परीक्षा के अंत में,
the Lord visibly appeared to him.
परमेश्वर सामने उसके सामने आ जाता है.
God is light.
परमेश्वर प्रकाश है.
There is no darkness in him.
उसमें कोई अंधकार नहीं है.
And when Job saw the light.
और जब अय्यूब ने उस प्रकाश को देखा.
It shined into his being.
और वो प्रकाश उसके अंदर चमक उठा.
He had a new revelation of the needs in his own heart.
और तब उसे पता चला कि उसके हृदय में कितनी सारी बुरी बातें हैं और उसको परमेश्वर की जरूरत है.
Oh, I repent, Lord.
उसने कहा, हे प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ.
And then the Lord gave him twice as much blessing as he had before.
और फिर परमेश्वर ने उसके जितने आशीष थे उसको दुगुना किया.
So here is the purpose of trials and trouble.
तो यहाँ जो है परीक्षा और सताव हमारे लिए होता है.
It is to purify us even more.
ताकि हम और शुद्ध किए जाए.
So that God can bless us even more.
ताकि परमेश्वर हमें और अधिक आशीष दे.
But we don't know what is in our heart.
लेकिन हमें पता नहीं हमारे हृदय में क्या है.
And God has to show us what is in our heart.
और परमेश्वर ने हमको दिखाना है हमारे हृदय में क्या है.
So we want to make God number one.
तो इसलिए हमें परमेश्वर को पहला नंबर का स्थान देना है.
I did a little message in another church recently here.
और हाल ही में एक और कलीसिया में मैंने एक संदेश दिया.
On different forms of idolatry that are in the human heart.
और विभिन्न प्रकार की जो मूर्तियां हैं हमारे हृदय में उसके बारे में.
But an idol.
एक जो मूर्ति है
by definition,
और उसका व्याख्या इस प्रकार से है.
Anything that replaces God.
कोई भी ऐसी बात जो परमेश्वर के बदले में आ जाती है.
Anything we love more than God is idolatrous.
और ऐसी कोई बात जो परमेश्वर से ज्यादा हम उसको प्रेम करते हैं वो मूर्ति है.
And so I had listed 8 major idols of the human heart.
तो मनुष्य के हृदय की 8 ऐसी मुख्य बातें मैंने यहाँ पर उसकी यादी बनाई है.
I'll give a brief comment on each one.
और हर एक के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा.
But anything we love more than God is idolatrous.
लेकिन साधारण तौर पर हम परमेश्वर से ज्यादा उस चीज को प्रेम करते हैं तो वो मूर्ति है.
One of the greatest problems is the idol of human love.
और सबसे एक उन 8 बातों में से एक बात जो है वो मनुष्य का प्रेम.
In John chapter 4,
योहन्ना के 4th अध्याय में
Jesus was talking to the woman at the well.
यीशु उस स्त्री से बात कर रहा था जो कुएं के पास थी.
In verse 14,
और 14वें वचन में,
whoever drinks of the water that I give him shall never thirst, but the water I give him shall be in him a well of water springing up.
परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो उसे मैं दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा.
She was drinking from the wrong source.
और वो जो महिला थी वो गलत स्रोत से पानी पी रही थी.
And he knew what her problem was.
और वह जानता था उसकी समस्या क्या है.
And so she said in the next verse, "Sir, give me this water."
तो अगले वचन में हम देखते हैं उस महिला ने कहा, ठीक है मुझे यह पानी दे दो.
And so in the next verse,
तो अगले वचन में,
he said, "Go call your husband and come here."
तो जाओ अपने पति को बुलाकर लेके आओ.
He knew what her problem was.
और यीशु जानता था उसकी मुश्किल क्या है.
She said, "Oh, I have no husband."
तो उसने स्त्री ने कहा कि हाँ मेरा कोई पति नहीं है.
And he said, "I know you have already had 5 husbands."
तो यीशु उसे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हारे 5 पति हो चुके हैं.
And the man you're living with now is not your husband.
और अब जिस मनुष्य के साथ तुम रह रहे हो वह तुम्हारा पति नहीं है.
One of the greatest deceptions of the human heart.
और एक बड़ा जो धोखा है मनुष्य के हृदय का वो ये है.
Oh, I'll find all my happiness in another person.
और मेरा जो आनंद है मैं दूसरे व्यक्ति के साथ में उसे पा सकता हूँ.
But anything that we love more than God, we will never find happiness.
लेकिन हम जो परमेश्वर के अलावा और कोई चीज में ज्यादा प्रेम ढूंढने का प्रयत्न करेंगे तो हमें वो संतुष्ट नहीं मिलेगा, हमें वो प्यार नहीं मिलेगा.
ओ द आइडल ऑफ ह्यूमन लव,
और मनुष्य का जो प्रेम है वो जो मूर्ति है,
व्हाट अ डिसेप्शन इट इज,
और कितना वो धोखा देने वाली बात है.
द होल पर्पस ऑफ मैरिज,
और शादी का जो मकसद है वो ये है,
इज टू प्रिपेयर अस फॉर आवर हेवनली ब्राइडग्रूम,
वो हमारा स्वर्ग स्वर्ग की ओर जो दुल्हन है उसके लिए होना है.
द लॉर्ड वांट्स अ ब्राइड हु इज जस्ट लाइक हिमसेल्फ,
और मैंने कहा दुल्हन, बल्कि दुल्हन नहीं, हमारा दूल्हा है जो यीशु है, उसके उसके ओर हमारा ध्यान होना है.
He said in Matthew 11:29,
मत्ती 11 के 29वें वचन में,
and this is amazing,
और यह बहुत ही अद्भुत है.
Here is the creator describing himself,
और अपना जो निर्माण करता है अपने बारे में वो बता रहा है.
I am meek and humble in my heart,
मैं नम्र और मन में दीन हूँ.
Learn this from me,
और मुझसे यह सीखो,
and you will find rest in your soul,
ताकि तुम अपने मन में विश्राम पाओगे.
God wants a people who are like himself,
और परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है जो उसके जैसे हो.
But the problem of the human heart is that we're proud and we're angry and bitter.
लेकिन मनुष्य के मन की हृदय ऐसा है कि वो गर्वीला है, वो घमंड करने वाला है और गुस्सा करने वाला है.
And then we have idol number two.
और फिर हम दूसरी जो मूर्ति है हमारे हृदय में एक प्रकार से, उसके बारे में हम बात करते हैं.
The idol of needing man's approval.
और सामने वाले मनुष्य या दूसरे मनुष्य से हम उत्तेजना पाना चाहते हैं, या हम एक प्रकार से चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले.
John 12:43,
यूहन्ना का 12वां अध्याय का 42वां वचन,
They loved the praise of men more than the praise of God.
और परमेश्वर महिमा करने से ज्यादा उन्होंने सामने जो लोग थे उनकी प्रशंसा को ज्यादा महत्व दिया.
Major problem of the human heart.
और यह हमारे मन की एक समस्या है.
Whose approval are we wanting?
कौन है जो हमें सही तरीके से प्रशंसा देना चाहिए?
Are we trying to please God or are we trying to please people?
क्या हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं या लोगों को खुश करना चाहते हैं?
Matthew 10:37,
मत्ती के 10वें अध्याय का 37वां वचन,
If anyone love his father or mother more than me, he is not worthy of me.
अगर कोई मनुष्य ऐसा है जो अपने माता पिता या भाई बहन से ज्यादा प्यार करता है तो वो मेरे पीछे चलने योग्य नहीं है.
If any man love his son or daughter more than me, he is not worthy of me.
अगर कोई मनुष्य है जो अपने बेटा या बेटी से अधिक प्रेम करता है तो वो मेरे पीछे चलने योग्य नहीं है.
Many people will not be a Christian because, it will offend my family, my friends.
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवारों से ज्यादा प्रेम करते हैं.
We need to make a choice.
हमें निर्णय लेना है, चुनाव करना है.
I want God's approval more than man's approval.
और मुझे परमेश्वर की सराहना या परमेश्वर की ओर से मुझे हाँ कहना सही होगा.
Amen.
Amen. Amen.
We need to please God more than people.
हमें लोगों से ज्यादा परमेश्वर को खुश करना चाहिए.
We must love the truth.
हमें सच्चाई से प्रेम करना है.
Dr. Brian Bailey was a personal mentor of mine.
और डॉक्टर ब्रायन जो थे वो मुझे सिखाने वाले थे एक प्रकार से.
A number of years ago, he was in a certain country.
और कई साल वो एक देश में थे.
And he saw all these evil spirits.
और उसने यह जो दुष्ट आत्माएं थी उनको देखा.
Other religions.
और दूसरे जो धर्म
holding people in bondage.
और वो लोगों को बंदीगृह में या जकड़ कर रखते थे.
And he was very angry with these spirits.
और वो ऐसे दुष्ट आत्माओं से काफी गुस्से से भरा हुआ था.
And God spoke to him.
और परमेश्वर ने उनसे बात की.
Who allowed these spirits to be here?
किसने यह ऐसे दुष्ट आत्माओं को यहाँ रहने की इजाजत दी?
And God said, I rule everything.
और परमेश्वर ने कहा, मेरा शासन सभी बातों पर है.
And this is what God said.
और यह बात परमेश्वर ने कही.
When people hate the truth,
जब लोग सत्य से घृणा करते हैं,
I will give them a lie.
मैं उनको
God will give them.
मैं उनको झूठ दे दूंगा.
Let's turn quickly to Romans 1.
रोमियो के पहले अध्याय में.
And verse 21.
और 21वां वचन.
That when they knew God, they did not glorify Him as God, nor were they thankful.
परमेश्वर को जानने के बावजूद भी वो उसकी महिमा नहीं करते थे और उसकी आराधना नहीं करते थे.
But they became vain. In their imaginations and their foolish heart was darkened.
परंतु व्यर्थ विचार करने लगे यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया.
Now let's go back to the thought of Genesis 11:1.
और उत्पत्ति के 11वें अध्याय के पहले वचन में जो विचार वहाँ पर बताया गया उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे.
After the flood of Noah.
नूह के उस पानी आने के बाद उस जल प्रलय के बाद नूह अभी भी जिंदा था.
And the human race began all over to turn quickly away from God.
और मनुष्य जाति है वो बहुत ही जल्दी ही से परमेश्वर के विपरीत परमेश्वर के विरुद्ध जीने शुरू कर दी.
They all knew the truth.
और वो सारे सत्य को जानते थे.
Here is great grandfather Noah warning them again.
और यहाँ पर नूह है सबको सावधानी या चेतावनी दे रहा है.
And here are false religions, false worship developing everywhere.
और यहाँ पर एक प्रकार से गलत आराधना गलत मूर्तियाँ इस प्रकार से बढ़ रही है.
The time Noah died,
और जिस समय नूह का अंत हुआ
Abraham was born.
अब्राहम का जन्म हुआ.
And in his time, there were homosexual cities raising up everywhere.
और उसके समय में ऐसे शहर बढ़ रहे थे जहां पर समलिंगी लैंगिक व्यभिचार होते थे.
They all knew the truth.
और वो सारे सत्य को जानते थे.
But many people loved a lie.
लेकिन बहुत सारे लोगों ने झूठ में विश्वास किया.
So let's look again in Romans 1.
तो रोमियो के उस पहले अध्याय में हम फिर से देखते हैं.
Verse
23. और 23वां वचन.
They changed the glory of the incorruptible God to an image made like the corruptible man, like birds and four-footed beasts and creeping things.
और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला.
These are people that all knew the truth.
और वो ऐसे लोग थे जो सत्य को जानते थे.
I don't want that.
मुझे वो नहीं चाहिए.
I want to create my own religion.
और मैं मेरा अपना धर्म बनाना चाहता हूँ.
So here is God's response.
तो यहाँ परमेश्वर इस प्रकार से प्रतिक्रिया देता है.
Verse 24.
और 24वां वचन.
Therefore God also gave them up to uncleanness through the lusts of their own hearts. To dishonor their own bodies between themselves.
इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन के अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें.
Verse 25.
और 25वां वचन.
Who changed the truth of God into a lie and worship and serve the creation more than the Creator?
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की. न कि सृजनहार की जो सदा धन्य है.
Verse 26.
और 26वां वचन.
For this cause God gave them up to vile affections, for even their women did change the natural use into that which is against nature.
और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला.
That's lesbianism.
और वो एक स्त्री दूसरे स्त्री से प्यार करती है.
Verse 27 is homosexuality.
और 27वां वचन जो है वो समलिंगी पुरुष एक प्रकार से
व्यभिचार करते हैं। Likewise, also the men leaving the natural use of the woman burned in their lust one toward another, men with men working that which is unseemly and receiving in themselves that reward of error that was right.
वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया।
Verse 28.
और 28वां वचन।
Even as they did not want to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind.
और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें।
The real problem is the human heart.
मुख्य बात यह है, मुख्य मुश्किल यह है कि मनुष्य का हृदय।
Who are we going to welcome into our life?
हमारे हृदय में हम किसका स्वागत करेंगे?
Are we going to welcome God's spirit?
परमेश्वर के आत्मा का हम स्वीकार करेंगे?
Or evil spirits?
या दुष्ट आत्माओं का हम स्वागत करेंगे?
We have a choice to make.
और चुनौती हमारे पास है, हमें करनी है।
We must close our eyes to evil.
हमें बुराई से आँखों को बंद रखना है।
It's important who our friends are.
और महत्वपूर्ण है कि हमारे दोस्त कौन है।
What we look on and television and the internet.
हम इंटरनेट में और टेलीविजन में कौन सी बातें देखते हैं।
We must feed the new man, Christ in us, not the old nature.
और हमें यीशु मसीह हमारे हृदय में भरना है।
All right, here are several other little idols of the heart.
और कुछ ऐसी हृदय की मूर्तियां हैं।
Number 3
और तीसरी
is the idol of position.
और एक ऐसी मूर्ति है हमारे लिए होती है जो मेरी पोजीशन क्या है, मेरा दर्जा क्या है।
This began in heaven.
और यह स्वर्ग में ही शुरू हुआ।
Lucifer was more in love with his music ministry than he was with his relationship with God.
और लूसीफर जो स्वर्गदूत था, जो आराधना करने वाला, संगीत बजाने वाला, वह अपने उस संगीत बजाने में ज़्यादा चाहत रखने लगा।
He used his musical talents and his wisdom and gifts to draw people to himself.
और वह उसके पास जो हुनर थी, उससे वो दूसरों को उसके पास, उसके करीब आकर्षित करने लगा।
He persuaded one third of heaven to follow him.
और उसने एक तृतीयांश जो स्वर्गदूत थे स्वर्ग में, उनको अपनी ओर खींच लिया।
We must never put our ministry and our position above our relationship with God.
हमने हमारा जो कार्य है, हमारी जो सेविका है, उसको परमेश्वर के ऊपर नहीं करना है।
Number 4.
चौथी बात।
The idolatry of attainment. To get a gold medal and to be number one.
और एक ऐसी मूर्ति हम बनाते हैं कि मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कहीं पहुंचना है।
You know, this is what natural Olympics are all about.
और ओलंपिक्स और ऐसी प्रतियोगिताएं होती है, वो उसके बारे में ही है।
And Paul said, we are all running in a race.
और पौलुस ने कहा, हम सब उस दौड़ में शामिल है।
But we are to seek an incorruptible crown, not a corruptible crown.
लेकिन हमें ऐसे मुकुट पाने के लिए दौड़ लगानी है जो कभी खत्म न होने वाला है।
You know, so often when people win a gold medal,
और बहुत सारे समय वो स्वर्ण पुरस्कार जब लोग पाते हैं,
it destroys their heart.
वो उनके हृदय को खराब कर देता है।
Oh, there's no one on earth like I am.
वो फिर ऐसे सोचने लगता है, इस सारे धरती पर मेरे जैसा कोई नहीं है।
It destroys the heart with pride.
और उनका हृदय जो है नाश हो जाता है उस घमंड की वजह से।
And that's the spirit of this world.
और यही आत्मा है इस दुनिया का।
Because the prince of this world, Satan, has the same thinking.
क्योंकि इस दुनिया का जो देवता है शैतान, उसकी ऐसी ही सोच है।
We are not to be conformed to the thinking of this world, but be transformed by the renewing of our mind.
हमें इस दुनिया की बातों में समझ नहीं लेना है, बल्कि हमारे मन को पूरी तरह से नया करना है।
And idol number 5.
और पांचवी जो मूर्ति है।
The idol of money.
पैसा जो हमारे लिए एक मूर्ति या देवता बन जाता है.
Judas sold his soul to Satan for 30 pieces of silver.
और यहूदा ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए वो गलत कार्य किया.
What a privilege to be chosen by the Messiah to be one of the 12 apostles.
कितनी भली बात थी कि यीशु के साथ उन 12 चेलों में से एक का होना. यहूदा उनमें से एक था.
But he loved money more than Messiah.
लेकिन यीशु से ज्यादा उसने उस पैसे से प्रेम किया.
He was a thief.
और वो चोर था.
And he had the anointing.
और उसके ऊपर वो अभिषेक था.
He could cast out devils and heal the sick.
और वो दुष्ट आत्माओं को भगा सकता था, लोगों को चंगा कर सकता था.
But there was something he loved more than the truth.
लेकिन उस सत्य से कुछ और उसमें वो ज्यादा प्रेम रखता था.
And Jesus is the truth.
और यीशु सत्य है.
He loved money.
लेकिन यहूदा ने पैसे से प्रेम रखा.
And money will reveal what kind of a heart we have.
और पैसा बताता है आपका हृदय कैसा है.
And the idol number 6 of tradition.
और छठा जो है परंपरा. एक परंपरा हम मूर्ति पूजा बना सकते हैं.
Tradition is a major idol of the human heart.
संस्कृति या परंपरा जो है वो भी एक इस प्रकार का देवता या मूर्ति बन सकता है हमारे हृदय में.
This is the way we've always done it.
हम इसी प्रकार तो हमेशा करते आए हैं.
My parents, my grandparents, my great-grandparents, we've always done it this way.
मेरे माता-पिता, मेरे दादा-दादी, नाना-नानी और उनके पहले जो पीढ़ी हुई उन्होंने सब ऐसे ही करते आए हैं.
And so when Jesus came with a new covenant,
तो इसलिए जब यीशु नई वाचा के साथ आया,
most of Israel said, we don't want it, we want to stay with the old covenant.
और उस समय के जो लोग थे उन्होंने कहा, यहूदी थे, उन्होंने कहा कि हमें वो पुराना ही व्यवस्था चाहिए, हमें नया यह जो वाचा है वो नहीं चाहिए.
Jesus chose 12 Galileans to be his disciples.
यीशु ने 12 ऐसे लोग जो गलील देश से थे उनको चुना.
Why?
क्यों?
Because they were known to be open for change.
क्योंकि वह ऐसे लोग थे जो परिवर्तन के लिए हाँ कहने वाले थे.
He did not choose Judeans who were trapped in tradition.
और वो ऐसे यहूदियों को उसने नहीं चुना जो अपनी परंपरा में, अपने रूढ़ी में वहीं पर स्थिर थे.
Idol number 7.
सातवी जो मूर्ति है.
Idolizing the wrong heroes.
और गलत हीरों को देवता के समान कह देना.
Our young people often have posters on their walls of rock stars or athletes or worldly people.
और खास करके नौजवान ऐसे है जो अपने घरों में बड़े बड़े कलाकारों के या हीरों की तस्वीरें लगाते हैं.
But when you idolize or admire someone, you try to become like them.
ऐसा होता है कि जब तुम इस प्रकार से हीरो के लिए ज्यादा दिलचस्पी रखते हो तो तुम उसे देवता जैसे बना लेते हो.
Talk like them, you dress like them, you act like them.
आप उनके प्रकार करने लगते हो, उनके जैसे कपड़े पहनते हो, उनके जैसे बोलने लगते हो.
But when you follow someone, you're going where they're going.
और जब तुम ऐसा किसी के पीछे चलते हो तो वो जहां जाते हैं वहां तुम चले जाते हो.
I don't want to go where a lot of those people are going.
और मैं I didn't get it.
I don't want to go where some of those people are going, you know.
और मैं नहीं जाना चाहता जहां पर वो लोग जा रहे हैं.
Because they're not going to heaven.
क्योंकि वो स्वर्ग में नहीं जा रहे हैं.
And idol number 8, I think this isn't working.
और आखिरी, this mic isn't working.
It's okay. You can.
आठवीं जो मूर्ति पूजा की बात है.
The idol of me.
मैं स्वयं यह एक मूर्ति पूजा हो सकती है.
As it says in 2 Timothy chapter 3, verse 1 and 2.
और दूसरे तिमुतियुस का तीसरा अध्याय का दूसरा और तीसरा वचन.
Okay. In the last days, dangerous times are coming.
In the aakhri dinon mein bhayankar samay aa rahe hai.
Because men shall be lovers of their own selves.
क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी लोभी डिंगमार ये सारी बातों को करने वाला होगा
covetous, proud, boasters, blasphemers.
अभिमानी निंदक माता पिता की आज्ञा टालने वाला कृतघ्न अपवित्र
idolizing self.
और अपने आप में घमंड करने वाला
even in the church world.
और यहाँ तक कि कलीसिया के काम में भी
people often are building their own kingdoms or glorifying their own name.
और लोग अपना ही राज्य जैसे बना रहे हैं या अपने आप को वो प्रशंसा दे रहे हैं।
Oh, I have the fastest growing church in this region.
मेरा तो सबसे ज्यादा जोरों से बढ़ने वाला कलीसिया है yeah. इस इलाके में।
So we don't want any of that.
तो हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए।
We want God's approval.
हमें परमेश्वर जिसे सही कहेगा वो चाहिए।
We want a pure heart.
हमें शुद्ध हृदय चाहिए।
We want to love the truth.
और हम सत्य से प्रेम करना चाहते हैं।
We will not be deceived if we love the truth.
हम धोखे में नहीं आएंगे अगर हम सत्य से प्रेम करेंगे।
Let's ask God for a pure heart.
आइए हम परमेश्वर से एक शुद्ध हृदय के लिए मांगे।
God bless you abundantly.
परमेश्वर तुम्हें बहुतायत से आशीष दे।
Amen.
Amen. Amen.
So, Pastor, did you want to take over from here? Mm-hmm. Yes, yes.
My wonderful message.
Yes.
Yeah, about 8 idols of our heart.
और हमारे 8 ऐसे हृदय की मूर्तियां जिसे हम बना सकते हैं.
And when I was listening to him on Friday, he kept saying, deceit should be far away from us.
और जब मैं उनसे बात कर रहा था शुक्रवार के दिन उन्होंने कहा कि यह जो धोखे की बात है हम उससे कब बहुत ही दूर रहना है.
I just felt it resonated with my heart as well as he was speaking.
और जैसे वो बात कर रहे थे मेरे हृदय में भी जैसे वो गूंज रहा था.
And I think at the conference we had 2 weeks back.
और सम्मेलन जो हुआ 2 हफ्ते पहले उसके बारे में
It all spoke about our identity. We know who we are in Christ.
और हमारी पहचान के बारे में वहाँ बताया गया मसीहा में हम जानते हैं हम कौन हैं.
And we embrace the truth.
और हम सत्य को अपनाते हैं.
It'll keep us away from deception.
और वो हमें उस धोखे से दूर रखेगा.
And I think you know none of us can say we have got it all. We need continuous the substance that he spoke about. We need the grace of God to be poured into our heart by the Spirit so that we can become more like Jesus.
और हम कोई नहीं कह सकता है कि मैं अब पहुंच गया हूं मैं परिपूर्ण हूं बल्कि लगातार हमें वो 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 बात यानी वो अनुग्रह हमें मिलना है उसको पाते रहना है ताकि हम हमारे मन को शुद्ध रखें.
I like what he said. Grace is a substance. We can ask God for it. More
और बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अनुग्रह जो है एक वस्तु है हम उसे और ले सकते हैं परमेश्वर से.
God's love is a substance. That's why it says he poured his love into our heart by the Holy Spirit.
और परमेश्वर का प्रेम भी एक प्रकार से वस्तु है इसलिए लिखा है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हमारे हृदयों में उंडेला आत्मा के द्वारा.
Come to stand.
आइए हम सब खड़े हो जाएं.
If you feel convicted of some of the idols that he spoke about.
अगर आपको लगता है आपको पाप का एहसास हो रहा है कुछ बातों को लेकर
नो वी आर मैन प्लीजर्स देन गॉड प्लीजर्स
और हम मनुष्य को खुश करने वाले हैं ना कि परमेश्वर को खुश करने वाले हैं.
एंड यू नो हीरोज एंड हु योर फ्रेंड्स आर एंड यू नो
और आपके मित्र कौन हैं और आपके हीरो कौन हैं.
एंड यू नो जस्ट सेइंग गॉड इज एवरीथिंग फॉर अस
और हमें इस प्रकार से कहना है मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ है.
Paul to just pray for us that God will deal with the idols in our hearts.
और पौलुस हमारे लिए प्रार्थना करेंगे हमारे हृदय में जो भी मूर्तियां हैं उसको लेकर.
Let us raise our hands to the Lord.
आइए परमेश्वर की ओर हमारे हाथों को बढ़ाएं.
Lord Jesus, we pray for new grace.
प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं अनुग्रह के लिए.
Fill us with new grace today.
Aaj ek naye anugrah se hame bhar de.
Let this be a new beginning in our lives.
Hamare jeevanon mein ek nayi shuruaat hone de.
And now for the washing of the word of God.
Aur ab tere vachan se hame dho le.
Wash us.
Hame dho le.
Wash us with the word of God.
Aur parmeshwar ke vachan se hame dho
le. Cleanse us, O Lord.
Hame saaf kar
prabhu. Cleanse us, O Lord.
Hame saaf swachh kar prabhu.
A new anointing.
Aur ek naya abhishek parmeshwar.
A new desire to know you and please you.
Aur ek nayi ichha tujhe jaane aur tujhe tere liye baatein kare.
Let this day be a new beginning.
Aur aaj yah hum sab ke liye ek naya din ho jaye.
Give us a holy hatred for sin.
Aur paap ko lekar hamare man mein tiraskar de de.
And a love for the truth.
और सत्य के लिए हमारे मन में प्रेम दे दे.
Jesus is the truth.
यीशु ही सत्य है.
Jesus is the word of God.
यीशु ही परमेश्वर का वचन है.
And so fill us with your word, O Lord.
और प्रभु तेरे वचन से हमें भर दे.
Fill us with your light.
और तेरे प्रकाश से हमें भर दे.
Expel all darkness.
और हमारे अंदर से पूरे अंधकार को निकाल दे.
In the mighty name of the Lord Jesus Christ.
और यीशु मसीह के महान नाम से.
Thank you Jesus.
धन्यवाद यीशु.
Thank you Jesus.
धन्यवाद यीशु.
Thank you Lord. Amen.
धन्यवाद प्रभु. आमेन. आमेन.